जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 गौरनिताय
श्री श्री कौलदीप धाम की श्री धामेश्वर गौरांग महाप्रभु की श्री विष्णु प्रिया देवी की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हम अभी एक बहुत ही उत्कट स्थान पर आए हैं। इस स्थान के भाव को समझने के लिए आपको इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना होगा, और जिसको भी विवश होकर नींद आती होगी उसको नम्र होकर खड़े होकर कथा सुनना है। ये कथा का नियम है। अगर आपको नींद आना है तो नींद आने में कोई दोष नहीं होता है। नींद तो आ सकती है, लेकिन नींद आने पर हम क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप वहीं बैठकर सोते मत रहना, बाजू में उठकर खड़े हो जाना और कथा सुनना। दिस इज द एटिकेट। तो ये विष्णुप्रिया देवी का मंदिर है, धामेश्वर गौरांग महाप्रभु का। सबसे पहले आपको थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है कि मैंने जो उस दिन कथा की थी योगपीठ पर, तो बीच में व्यवधान हो गया था और हमको कथा छोड़कर निकलना पड़ा। तो थोड़ी बहुत बाल लीला वहाँ वर्णन किया हमने, लेकिन 10 साल की उम्र में श्री गौरांग निमाई की ब्राह्मण दीक्षा हुई, उपनयन संस्कार, और उसमें हाथ में कमंडल और दंडा लेकर हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान निमाई सब घर में ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगने गए। हाँ, भवती भिक्षाम देही। जब हमारा भी उपनयन संस्कार हुआ था तो हमको भी कई जगह जाना पड़ा था, लोगों के पास जाकर भिक्षा मांगनी होती है। तो जब श्री निमाई ब्राह्मण दीक्षित होकर ब्राह्मण गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री प्राप्त करके जब घर घर भिक्षा मांगने के जाने लगे, तो देवी और देवताएँ ब्राह्मण और ब्राह्मण स्त्रियाँ बनकर उनको दान देने के लिए वहाँ प्रकट हो गए। और सब लोगों ने गौरांग महाप्रभु का सुंदर ब्राह्मण दीक्षित दर्शन किया। उसके बाद में उनका पढ़ाई आरंभ हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि क्योंकि विश्वरूप ने अद्वैत आचार्य के पास में भागवतम सुना तो सची माता को लगा कि इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इसलिए वो चले गए घर छोड़कर। तो इसलिए निमाई को अभी हमको ये सब नहीं करना है। निमाई भी जाके पढ़ाई करेगा तो वो भी विरक्त हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। बीच में सची माता का स्वप्न भी आया था कि निमाई भी संन्यास लेकर सर मुंडवा कर गेहूं वस्त्र पहनकर हाथ में दंडा लेकर जा रहे हैं। बहुत डर गए थे दोनों, बहुत डर गए थे। नौ कन्याओं का मृत्यु हो गई थी, बाद में विश्वरूप हुए वो भी चले गए, निमाई अकेले बचे हैं, बूढ़े माता पिता के लिए आपको सहारा नहीं है, इसलिए उनका विद्यादान उन्होंने बंद कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि महाप्रभु जी, श्री गौरांगा महाप्रभु जी बहुत चतुर हैं, तो उन्होंने क्या किया, जूठे उस समय पर कोई स्टील या ऐसा कोई तांबे का बर्तन नहीं हुआ करता था, सब बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे, खाना बनाने के लिए भी, भोजन करने के लिए पत्तल, और कभी मिट्टी के दोने भी होते थे जिसमें दाल वगैरह देते थे। तो जो भोजन किए हुए जूठे मिट्टी के बर्तन थे ऐसा ढेर लगा के रखते थे वो फेंकने के पहले, तो उसी पर जाकर ये ब्राह्मण दीक्षित हमारे निमाई पंडित जाके बैठ गए। सब बोले अरे सची माता आके भाग भाग के बोले अरे निमाई क्या कर रहे हो तुम, ब्राह्मण के पुत्र हो, गायत्री मंत्र प्राप्त कर चुके हो, तुमको पता नहीं चलता ये झूठा नहीं झूठा है, यहाँ पर आपको बैठना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा आप तो मुझे स्कूल तो भेजती नहीं हो, तो सीखेगा कैसे मैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये जो ज्ञान है, ये छुआछूत का, स्पृश्य अस्पृश्य का, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पवित्र होता है क्या अपवित्र होता है, ये तो मैं स्कूल में सीखूंगा ना गुरु जी के पास जाके, आपने तो आज भेजना ही बंद कर दिया मुझे, मुझे पता नहीं चलता ये क्या शुद्ध क्या है। तो फिर उनकी जिद के कारण उनको फिर पाठशाला भेजा गया। सांदीपनी मुनि के अवतार गंगादास पंडित वहां पर उपस्थित थे, नवद्वीप में गंगा किनारे उनका आश्रम था, गुरुकुल था, वहां पर उनको दाखिल किया गया। उनके कौन थे कलिग इस समय, मुरारी गुप्ता, हाँ, स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित, ये उनके को स्टूडेंट थे, उनके साथ में पढ़ते थे। और कुछ ही समय में गंगादास पंडित के गुरुकुल में उन्होंने बहुत विद्या प्राप्त किया, बहुत ज़्यादा, बहुत कम समय में सब पारंगत हो गए, इतने पारंगत हो गए कि वहीं पर वो वाद विवाद करके बाकी विद्यार्थियों को परास्त करने लगे, सबको बुला बुला कर चैलेंज करते थे, बुला बुला कर उनको डिफीट करते थे, और जो बात उन्होंने डिफीट करके सिद्ध किया है उसी को दोबारा खुद डिफीट करते थे, और बोलते थे अभी चैलेंज करो, फिर वो डिफीट किए बात को फिर दोबारा डिफीट करते थे। कुछ समझ में आया आपको? एक बात उन्होंने समझो आपसे वाद विवाद करके सिद्ध किया कि ये बात सच है शास्त्र के अनुसार, फिर उसी बात को शास्त्र के अनुसार खुद डिफीट करते थे और बोले आप अभी सिद्ध करो उसको, कोई सिद्ध नहीं कर पाता, फिर उसी बात को जो उन्होंने डिफीट कर चुके हैं उसी बात को शास्त्र के आधार पर फिर साबित करते थे, सब लोग चकित होते थे। और खास करके मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी के अवतार हैं, राम भक्त हैं, उनको जा जाकर पकड़ते थे और जा जाकर उनको वाद विवाद में खींचते थे, बोले नहीं मुझे वाद विवाद में इंटरेस्ट है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, तो बार बार उनके घर जाकर रास्ते में पकड़ते हुए गंगा जी किनारे गुरुकुल में पकड़ पकड़ के उनको वाद विवाद में खींचते थे और परास्त करते थे। तो एक बार मुरारी गुप्ता की कहानी मैंने बताई नहीं आपको, एक बार निमाई ने मुरारी गुप्ता को बताया, मुरारी चांट हरे कृष्णा, भगवान के नाम का जप करो, कृष्ण का नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो मुरारी गुप्ता के लिए तो चाहे गौरांग महाप्रभु बालक थे फिर भी वंदनीय थे, वो जानते थे उनकी पोजीशन क्या है। दूसरे दिन लौट के आए, उन्होंने बोला कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। बोले क्यों मुरारी तुम आत्महत्या करना चाहते हो, क्या कारण है इसका? उन्होंने कहा कि आपने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करने का आदेश दिया और मैं हृदय से उसको पालन करना चाहता हूं, और चाहा भी मैंने बहुत, मैंने रात भर जगकर कोशिश किया हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, लेकिन जब भी मैं हरे कृष्ण का नाम लेता था मेरे मुंह में राम का ही नाम निकलता था। रात भर मैंने ये कोशिश की कि मेरे आदत को बिगाड़ तोड़कर कृष्ण का नाम लेने का अभ्यास करूं, लेकिन मेरे मुंह से हर बार केवल राम का ही नाम निकलता रहा। इसका मतलब यह हो कि मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर सका, अगर मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर सकता हूं तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। और रोने लगे वो, रो रो के वहां बेहोश हो गए वो। तो महाप्रभु जी ने उनको अपनी गोद में लिया, जगाया और कहा मुरारी तुम हनुमान हो, इसलिए तुम्हारा ये जो राम भक्ति है मैं सब विश्व के लिए प्रकाशित करना चाहता था, मैं जानता हूं कि तुम हनुमान हो, देखो देखो तुम्हारी पूंछ निकल रही है। और तुरंत हनुमान जी मुरारी मुरारी गुप्ता के पीछे से हनुमान जी की पूंछ निकली और वो हनुमान के भाव में आ गए और मुरारी गुप्ता को गौरांग महाप्रभु ने बताया पता नहीं रावण सीता को ले गया है, क्या कर रहे हो वहां पर तुम? तुरंत हनुमान जी ने गर्जना किया जोर से, अभी जाता हूं लंका को कूद कर सागर को लांग कर अभी सीता को लेके आता हूं, अभी लंका को जला देता हूं, ऐसे उस भाव में आ गए वो। तो मुरारी गुप्ता का जो गौरव है, इनका जो महानता है, वो प्रकट करने के लिए गौरांग महाप्रभु ने लीला किया। तो मुरारी गुप्ता का घर जो है वो योगपीठ के थोड़ा सा पीछे है, छोटी सी गली थी, हम जा नहीं पाए वहाँ पर। तो मुरारी गुप्ता वैद्य थे, हाँ, तो वो उनके कलीग थे। तो इस तरह से कुछ समय बाद में पिताजी का देहांत हुआ, मैंने बताया आपको, जगन्नाथ मिश्रा का। ये सोचकर ही कि विश्वरूप गए संन्यास लेने के लिए और अभी ये भी जाएंगे, ये विचार से ही उनका देहांत हो गया। तो माता अकेली हो गई, एक ही पुत्र है। तब बहुत शरारती, नटखट, सबको परेशान करने वाले निमाई थोड़े शांत हो गए। चंद्रशेखर मामा आए और उन्होंने सची माता और गौरांग महाप्रभु का लालन पालन किया, उनको देखभाल किया माता पिता की तरह। और कुछ देर बाद फिर उनका श्राद्ध करने के लिए निमाई जो है वो गया। आपको पता ना गायक गया कहाँ पर है? वाराणसी में है, वहाँ पर लोग श्राद्ध करने के लिए पहुँचते हैं, बिहार में है। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी महाराज से हुई। ईश्वरपुरी महाराज ये माधवेंद्रपुरी महाराज के शिष्य थे और माधवेंद्रपुरी महाराज वो महाराज थे जिन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी में कलयुग में राधा रानी का जो तत्व है उसको प्रकाशित किया। उसके पहले केवल सब लोग कृष्ण और विष्णु की पूजा करते थे, इन्होंने राधा रानी का तत्व और उनका विग्रह और उनकी पूजा आरंभ किया। कृष्ण के बगल में उनको रखकर उनका जोड़ी से विग्रह पूजन आरंभ किया। तो उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य भी उनके शिष्य थे, परमानंदपुरी भी उनके शिष्य थे, ब्रह्मानंदपुरी भी, जो महाप्रभु चैतन्य के बहुत पहले जन्म ले चुके थे, से बड़े बड़े महारथी भक्त थे, वो सब अधिकतर माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। उसमें से एक थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने अंत तक, जैसे बिहारी ने जगन्नाथ दास बाबा जी का सेवा किया, एकदम अंत तक, एकदम ऐसे बिस्तर पे पड़े हुए महाराज जी, उनका टट्टी पेशाब नहाना धुलाना सारा सेवा उन्होंने किया ईश्वरपुरी ने। तो ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। उसी सेवा के कारण परम भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर जब गौरांग महाप्रभु बनकर आए तो उन्होंने उनकी दीक्षा ग्रहण की। ईश्वरपुरी उनके भगवान के गुरु बने। स्वप्न दिया भगवान ने उनको कि कल हम आ रहे हैं और हमें आप दीक्षा देना। तो अगले दिन निमाई वहां पर पहुंचे तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ने कान में ईश्वरपुरी को वो मंत्र दिया था जो अगले दिन उनको उनके कान में देना है दीक्षा के रूप में। तो फिर जो मंत्र उन्होंने कल रात को सुना था स्वप्न में, वही मंत्र ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित को दिया और उनको दीक्षित कर दिया। जैसे ही दीक्षा उनकी हुई हरे कृष्ण महामंत्र में, वैसे प्रेम के सागर में डूब गए, वो पागल से हो गए, भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, कंपन होने लगा, बार बार बेहोश होकर गिरने लगे, ऐसे उनका प्रेम आविर्भाव हो गया उनके अंदर। और इतने गंभीर हो गए जब लौट के आए नवद्वीप में सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि तब कब वो खुद टीचर बने हुए थे, जब वो गए उसके पहले खुद इतने वो विद्वान हो गए थे। तो गंगादास पंडित ने उनको कहा कि अभी आप विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाओ। जब लौट के आए तो व्याकरण का जो भी विद्या उनको लोगों को पढ़ाना था वो केवल कृष्ण 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 ही पढ़ाते थे। वो वर्बल रूट्स, संधि और धातु और क्या समास, जो भी संस्कृत का व्याकरण है, हर चीज कैसे कृष्ण पर आधारित है, कैसे सबका मूल कृष्ण ही है, ऐसे करके पढ़ाना आरंभ किया उन्होंने। तो विद्यार्थी बोले कि कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं क्या? तो उन्होंने कहा मूल भी कृष्ण है, शाखा भी कृष्ण है, समास भी कृष्ण है और धातु भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी मैं इसके आगे आपको सिखा नहीं सकता क्योंकि तो मुझे अभी सिखाने के लिए वो भाव नहीं बचा है मेरे अंदर। तो सारे किताबें जो पढ़ाते थे उनको लोगों को, वो किताबें मैंने गंगा में फेंक दी। बोले मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ, मुझे अभी ये व्याकरण सिखाना मुमकिन नहीं। सब दुखी हो गए। बोले कोई बात नहीं, आप जो सिखाना है सिखाते रहो, आपके मुँह से हमको सीखना है। फिर भी आगे वो अपनी विद्या पढ़ाने का काम बढ़ा नहीं सके। तो कुछ देर बाद में फिर वनमाली आचार्य वहां पर गए और उन्होंने सोचा कि अभी निमाई जो है वो जवान हो गया है, उसका विवाह भी होना चाहिए। तो लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ में उनका विवाह हुआ। मैं आपको सब संक्षेप बता रहा हूं, लक्ष्मी प्रिया देवी को विवाह होने के पश्चात अपनी परिवार को चलाने के लिए, कुछ विद्या सिखाने के लिए, कुछ धनार्जन करने के लिए, फिर चैतन्य निमाई जो थे, निमाई पंडित बन गए तब तक, निमाई पंडित जो है कुछ यात्रा करने चले गए, सफर करने के लिए वाराणसी गए, तो उस समय सांप का दंश होकर लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो गया। जब लौट के आए तो माता ने कहा, वनमाली ने कहा कि अभी दूसरा विवाह होना चाहिए, तो विष्णुप्रिया देवी नाम की सुंदर कन्या जो उनको गंगा किनारे उनकी मुलाकात हुई थी, एक बार वो गंगा पूजा करने के लिए साधन सामग्री लेकर जा रही थी, उसमें उनका नेत्र मिलन हुआ था, तो विष्णुप्रिया भी समझ गई थी कि ये मेरे स्वामी हैं, निमाई भी समझ गए थे कि हमारी होने वाली पत्नी है। तो यथावकाश बड़े ही सुंदर कार्य से बुद्धिमंत खान ने इनके विवाह के लिए बहुत डोनेशन दिया था। ये बुद्धिमंत खान जो है ये भगवान के बड़े भक्त हैं, और ये एक कहानी मैं बताऊंगा आपको उसके बाद में, मुझे याद करना बुद्धिमंत खान की कहानी बताने की, क्योंकि अभी मैं विषयांतर नहीं करना चाहता कि बुद्धिमंत खान कौन थे। तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और विष्णुप्रिया के विवाह में बुद्धिमंत खान ने बहुत सारी व्यवस्था की थी, बहुत सारा डोनेशन भी दिया था। तो विष्णुप्रिया का विवाह हो गया और फिर भगवान ने संकीर्तन आरंभ किया दिन में और सभी के घरों में, तो उसके बाद में रात में भी आरंभ हुआ। और तब एक घटना ऐसे हुई कि सब जगह कृष्ण का नाम का प्रचार शुरू हुआ, और एक बार भाव में विभोर होकर श्री निमाई पंडित एक जगह एकांत में बैठे थे, और एकांत में बैठकर ललिता, विशाखा, तुंगविद्या, शंपकलता, धनिष्ठा, हाँ, रसिका मंजरी, रास मंजरी, ऐसे भगवान के सखियों का नाम का जप कर रहे थे। तो कुछ विद्यार्थी वहां पर आए, अरे देखिए हमारे गुरुजी तो कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, सखियों का नाम ले रहे। उन्होंने निंदा किया, उनका टीका किया उनके ऊपर, ऐसे कैसे आप करते हो, आप हमको सिखाते हो कि कृष्ण का नाम जप करना है और खुद तो गोपियों का नाम जप कर रहे हैं। तो उन्होंने दुर्लक्ष किया कुछ समय के लिए, फिर सखियों का याद करके, स्मरण करके, उनकी लीलाओं को स्मरण करके उनका नाम जपना आरंभ किया। तो फिर विद्यार्थी आए, फिर इन्होंने टोका उनको, फिर टीका किया उनके ऊपर, फिर कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोला। तब निमाई को बहुत गुस्सा आया, तो डंडा लिया उनके पीछे भागने लगे मारने के लिए, सब विद्यार्थी भाग गए। तब उनके मन में एक विचार आया कि मैं गृहस्थ हूं और मेरे अवतार का उद्देश्य है कि मैं हरिनाम का प्रचार सारे विश्व में करूं, भारतवर्ष में करूं, सब जगह करूं, लेकिन क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, लोग मुझे इतना सम्मान नहीं करते हैं, और प्रचार करने के लिए सम्मान होना बहुत जरूरी है, हाँ, ये नहीं कि खुद के लिए, लेकिन अगर प्रचारक के प्रति, सुनने वाले के प्रति मन में अगर सम्मान होता है तो उसकी शिक्षा वो अच्छे भाव से ग्रहण कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि सन्यासी लोगों को सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, और सन्यासी जो भी कहेगा उसको भगवान का उपदेश मानकर सुनते हैं। तो उनके मन में प्रथम विचार आया कि मुझे घर गृहस्थी को त्याग करके सन्यास ग्रहण करना चाहिए। जब मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं भगवान स्वयं हूं और सन्यासी शिष्य के रूप में जब मैं यात्रा करूंगा तो लोग मुझे स्वतः दंडवत करेंगे, उससे उनको लाभ होगा, उसके बाद जो भी मैं कहूंगा उसको वो पालन करेंगे। इस प्रकार से जिस उद्देश्य से मैं इस पृथ्वी पर अवतार लिया हूं वो उद्देश्य बड़ी आसानी से सफल हो जाएगा। और यह विचार उनके मन में पनपने लगा, कल्टिवेटेड, गेटिंग एक्सपांडिंग, हाँ, मन में उस विचार की वृद्धि होने लगी, और धीरे धीरे गौरांग ने निर्णय ले लिया कि मुझे अभी संन्यास लेना है। उस समय विष्णुप्रिया पत्नी थी घर पर उनके, बड़ी सुशील, शालीन और बड़े अच्छा व्यवहार, भगवान के प्रति सेवा भाव, बड़ी नम्रता से अपनी सासू की सेवा करती थी, अपने पति के लिए सेवा करती थी, हाँ, लक्ष्मी से भी महान थी वो। तो पहले जाकर उन्होंने चंद्रशेखर मामा को अपने मन का विचार बताया, हरिदास ठाकुर को बताया, फिर अन्य वरिष्ठ वैष्णव को बताया, अद्वैता आचार्य वगैरह को, कि मेरा ऐसा सा विचार है। सबका हृदय में जैसे कि तूफान टूट पड़ा, आंधी टूट पड़ी कि आप संन्यास लेंगे, आपके सुंदर घुंघराले सुनहरे बाल जो कंधे पर बहते हैं वो नहीं रहेंगे, इसको हम विचार भी सहन नहीं कर सकते। आप गृहस्थ लेकर प्रचार कर सकते हो, आपको जो प्रचार करना है वो गृहस्थ बनकर प्रचार कर सकते हो, संन्यास लेने की जरूरत क्या है, ऐसे बहुत सारा उनका भावनाओं का संघर्ष हुआ उनके साथ में, फिर भी निमाई पंडित का विचार निश्चित था कि मुझे संन्यास लेना है। और उन्होंने कुछ भक्तों को आदेश भी दिए कि आप जाकर व्यवस्था करना आरंभ कर दीजिए, मैं कंटकपुर में जाऊंगा। कंटकपुर का आज का नाम है क्या, कटवा, गंगा पार है वो। कंटकपुर में मैं क्या नाम था उनका, केशव भारती महाराज, उनसे मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो मकर संक्रांति के दिन उनका जाने का तय हो गया। तब तक सची माता और विष्णुप्रिया को भी खबर मिल चुकी थी कि हमारी निमाई अभी घर छोड़ के जाएंगे। सची माता ने उनको बहुत विरोध किया, कई बार बेहोश हो गई, कई बार उन्होंने विनती किया, रोई भी जा कि मैं अकेली बूढ़ी औरत कहाँ जाऊंगी, विश्वरूप चले गए, तुम्हारे पिता भी चले गए, और मैं विधवा औरत, बूढ़ी औरत, किसके सहारे पे जीऊंगी। तुम घर पे रहो, यहाँ पर रहकर जो प्रचार करना है करो, संकीर्तन तो नवद्वीप में आपने आरंभ कर ही दिया है, हजारों लोग तो उसको पालन कर ही रहे हैं, तो आप गृहस्थ बनकर भी कर सकते हो। लेकिन निमाई अपने विचार पर अटल थी, और जाने का जब तय हुआ तो उस दिन शाम को वो विष्णुप्रिया को मिले अपनी पत्नी से, और अपने मन का विचार अपने पत्नी के सामने रखा। उन्होंने कहा मैं गृहस्थी में रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। जब मैं गृहस्थी को त्याग कर सन्यासी बनूंगा तो स्वतः ही बहुत ही कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना मेरे प्रचार का परिणाम अनंत लोगों को मिल सकता है। तो विष्णुप्रिया ने एक आदर्श वहां पर अपना उदाहरण खड़ा किया है। विष्णुप्रिया ने कहा कि जिस कार्य करने में आपको संतुष्टि हो, आपको समाधान हो, जिसमें आपकी इच्छा पूर्ति होती हो, उसी को मैं आपका आदेश मानूंगी। उन्होंने ये वाद विवाद नहीं किया उनसे कि मैं कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, हम दोनों औरतें कैसे रहेंगे, आपका सहारा नहीं होगा तो हमें भोजन कहां से मिलेगा, रक्षा कौन करेगा हमारी, ऐसे कुछ बातचीत नहीं हुआ। वो पूर्णतः समर्पित पत्नी थी, केवल शरीर के सेवा में लग्न नहीं थी, पति की क्या इच्छा है उस इच्छा से भी समर्पित थी वो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपका कार्य सिद्ध होगा, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, तो आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, मुझे क्या कष्ट होगा इससे मतलब नहीं है। तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने अपनी एक मूर्ति प्रकट की तुरंत उनके सामने, और विष्णुप्रिया को दे दी। उन्होंने कहा कि भले मैं संन्यास लेकर चला जाऊंगा, लेकिन इस मूर्ति के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगा, और मेरी माता और आप जो भी भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन मुझे अर्पण करेंगे, वो मैं कहीं भी रहूंगा तो इस मूर्ति के माध्यम से आपके हाथ से स्वीकार करूंगा, और वो मूर्ति आपके सामने है, धामेश्वर गौरांग महाप्रभु। धामेश्वर गौरांग महाप्रभु की। तो ये मूर्ति, जब संन्यास का समय था, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु 24 साल के थे और विष्णुप्रिया देवी 16 साल की थी। आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो विष्णुप्रिया का जो उल्लेख है, तो बहुत सारे पात्र है उसके अंदर ना, बहुत सारे किरदार हैं, तो विष्णुप्रिया का भी उल्लेख है, जब विवाह हुआ तो उसका वर्णन है, फिर विष्णुप्रिया कैसी सेवा करती थी उसका वर्णन है, फिर जो आखिरी मुलाकात उनकी हुई, संवाद हुआ, उसका भी वर्णन है। उसके बाद में कहीं भी विष्णुप्रिया का वर्णन नहीं आता है, कहीं भी नहीं। और विष्णुप्रिया देवी 96 साल तक जीवित रही, 80 साल एक सन्यासी की पत्नी के रूप में रही, और 96 साल तक, 80 साल उसके बाद में उन्होंने इस मूर्ति की सेवा की। और जाने के समय श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने अपनी पादुका भी उनको दे दी, इन पादुकाओं की भी सेवा करना। तो मैं इतनी देर तक कोशिश वही कर रहा था कि वो पादुकाएं सामने लाई जाए और आप सबको उनका दर्शन हो, इसलिए मैंने कहा आप नीचे रहो, आराम से आपको दर्शन होगा। तो ये जो पादुकाएं सामने रखी है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु की पादुकाएं हैं। ये लकड़ी के खड़ा हुआ है, उसको अभी चांदी का लेप लगाया गया, लेकिन एक्चुअली सन्यासी की जो खड़ाऊ जो है वो खड़ाऊ है उनके। तो ये मंदिर बहुत उत्कट है, क्योंकि ये वास्तविक आप सोचेंगे तो ये सब कुछ तो उनके घर में होना चाहिए ना, जहाँ पर हम लोग योगपीठ में गए थे वहीं पर उनका विवाह हुआ था, वहीं पर उनकी गृहस्थी थी, वहीं माता थी, वहीं पिता थे, वहीं घर था, तो वो भी वहीं थी जब संन्यास लेके महाप्रभु चले गए, तो वो वहीं रही। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कथा में पहले बताया था कि नित्यानंद प्रभु ने और महाप्रभु चैतन्य दोनों ने बताया था कि जब मेरी लीला समाप्त करके 1534 में जब मैं जाऊंगा यहाँ से, लीला समाप्त करके अंतर्धान हो जाऊंगा, तब गंगा जी पूरे अंतर्द्वीप को ढक लेगी पानी से, बाढ़ आएगी और पूरा अंतर्द्वीप मायापुर जो है वो जल के अंदर जाकर मेरा धाम अंतर्द्वीप जो है अदृश्य हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी को जानते हुए महाप्रभु चैतन्य के अंतर्दान होने के बाद, आप गिनती कीजिए, 1486 प्लस 24 कितने होते हैं, 1510 है ना, 1510 साल में महाप्रभु ने संन्यास लिया। उसमें उनकी उम्र थी 24 साल, उस समय विष्णुप्रिया की उम्र कितनी थी, 16 साल। तो विष्णुप्रिया कितने साल तक जीवित रही, उसके बाद 80 साल, मतलब सन 1600 तक विष्णुप्रिया जीवित थी, और 1534 में गौरांग महाप्रभु अंतर्धान हो गए, संन्यास लिया, फिर भ्रमण किया, फिर छः साल के बाद यानी 1516 में वो जगन्नाथपुर में परमानेंट स्थित हो गए, और 1516 से लेके 1534 तक वो जगन्नाथपुरी रहे अपने उम्र के 48 उम्र तक। उसके बाद में संन्यास लेने के बाद में कभी भी विष्णुप्रिया देवी को महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अपनी माता को मिलते थे वो, लेकिन संन्यास के बाद में पत्नी को नहीं मिल सकते। तो माता भी विरह में थी, पत्नी भी विरह में थी, लेकिन माता को दर्शन हुआ करता था, माता का आदेश वो पालन करते थे कि संन्यास लेकर मेरे कहीं पास में ही रहो, कि जब कहे तब दर्शन में करने को आपका आ सकती हूँ। तो माता ने तो कई बार दर्शन किया, मायापुर में भी किया, क्योंकि संन्यास लेने के बाद भी वो नवद्वीप में आए थे, तभी माता ने दर्शन किया है, माता के हाथ का भोजन भी प्राप्त किया है। लेकिन विष्णुप्रिया देवी बाय रूल, उनको पता था कि आए हुए हैं यही कहीं हैं, लेकिन नियम से वो कभी भी उनके दर्शन करने के लिए गई नहीं, उनका दर्शन यही था धामेश्वर गौरांगा। तो 1534 के बाद में जो विद्वान पंडित थे, जो भक्त थे, वो जानते थे इस बात को, उन्होंने गंगा जी की बाढ़ आने वाली है ये समझकर विष्णुप्रिया देवी, सच्ची माता, पादुका, धामेश्वर गौरांग की मूर्ति, सब कुछ जो है गंगा के इस किनारे शिफ्ट किया, और यहीं पर 1534 के बाद में विष्णुप्रिया देवी रही, इसलिए उनकी मूर्ति भी यहीं रही, ये पादुका भी यहीं रही, और सच्ची माता भी यहीं रही। ये उसका ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि उनका घर नवद्वीप में होने के पश्चात भी ये मूर्ति यहाँ कैसे रही। तो 1510 के बाद 1534 तक योगपीठ पर, और 34 के बाद 1600 साल तक कोलद्वीप में इस मंदिर में विष्णुप्रिया देवी ने भजन किया। वो भजन कैसे किया, सब लोग ध्यान से सुनिए, इसको नींद आ रही हो अभी खड़े हो जाइए, क्योंकि असली बात तो अभी प्रकट हो रही है। हाँ, रोज दिन में वो दिन भर भगवान के नाम का जप करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्या करते हैं, एक मणि पर जप करते हैं और क्या करते हैं, अगले मणि पे जाते हैं, है ना, फिर वो एक माला हो गई तो फिर ये साक्षी माला का एक मणि नीचे करते हैं और गिनते हैं कितनी माला हो गई, लेकिन एक मणि पर मंत्र बोलने पर कोई नीचे नहीं करते, 108 हो गए तो फिर एक मणि एक माला के रूप में नीचे करते। विष्णुप्रिया देवी की साक्षी माला अलग थी, अजीब साक्षी माला थी उनकी। विष्णुप्रिया देवी एक मंत्र बोलती थी और एक चावल का दाना बाजू में रखती थी बैठकर जमीन पर, कुछ दाने यहाँ पर रखे हैं, एक मंत्र जपा, एक दाना यहाँ से यहाँ रख दिया, और दिन भर जप करती थी और एक एक दाना यहाँ से यहाँ करती थी। रात को जब यहाँ पर कुछ दाने इकट्ठा होते थे, उतने ही दाने पकाकर भोग लगाकर उसका भोजन करती थी। कितने हो सकते हैं, आप 100 ग्राम चावल लीजिए और कभी बैठ के उसको गिनिए, विष्णुप्रिया की याद में 100 ग्राम चावल लेके गिनिए, मे बी कुछ हज़ारों उसमें होंगे, शायद पता नहीं लाखों हो सकते हैं, आई डोंट नो। पाव किलो लीजिए फिर गिनिए, फिर आधा किलो लेकर गिनिए, इम्पॉसिबल है, उतने जितने दाने होंगे उतना जप करना एक दिन में बहुत इम्पॉसिबल है। तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कितने चावल के दाने इस तरफ आते होंगे और कितना भोजन वो करती होंगी दिन में एक बार, सुबह से लेकर रात तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए धामेश्वर गौरांग के सामने बैठकर वो दाने निकलते थे उसका ही चावल बनाकर वो भोजन करती थी। ऐसा भोजन किया उन्होंने, निरपेक्ष। चैतन्य चरितामृत में उसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद में जो भी उन्होंने विश्व के लिए किया उस सब में प्रधान सहायता विष्णुप्रिया देवी की है। उसका त्याग का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। इट इज नोवेयर मेंशन्ड व्हाट सैक्रिफाइसेस शी अंडरवेंट, व्हाट पेन्स शी अंडरवेंट। बट उन्होंने हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए अपने पति को अनुमति दे दी, यस यू कैन गो डिलीवर द होल वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे भी कष्ट हुआ अकेले को तो क्या प्रॉब्लम है, अगर मुझे अगर थोड़ा कष्ट होता है और विश्व का कल्याण हो सकता है तो मैं ये सारा कष्ट सहने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि वो विरह में बहुत खुश थी, आनंद था, लेकिन श्रद्धा से अपने पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए जीवन भर 16 साल की उम्र से 96 साल तक, यानी इमेजिन पूरा यौवन अवस्था, पूरी मध्यम वय की अवस्था, बूढ़ी अवस्था, अति बूढ़ी अवस्था, अति बूढ़ी अवस्था, सारा जीवन जो है पीछे ना चार्म ऑफ लाइफ वो यौवन में शुरू होता है, स्प्रिंग ऑफ लाइफ, वसंत ऋतु जीवन का, सब सारे भोग आनंद जो है, सुख जो है उसको प्राप्त होता है, वो सारा सुख जो है अपने जीवन के पीक अवस्था से लेकर मरने तक विष्णुप्रिया देवी ने सहन किया। और ये वो जगह है जहां पर विष्णुप्रिया देवी ने उस भाव से, उस उत्कट त्याग भाव से चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए यहां बैठकर भजन किया है। इसलिए ये जगह जो है होगी सीमेंट कंक्रीट की, पत्थर की खंभे होंगे यहाँ पर होंगे, लेकिन ये मंदिर उससे नहीं बना है। ये मंदिर जो है विष्णुप्रिया देवी के त्याग, समर्पण, भक्ति भाव, विश्व कल्याण के हेतु की करुणा, ये सब भावना से भरी हुई है। तो आपको हम विनती करेंगे कि आप इस भाव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना कीजिए। धामेश्वर गौरांग महाप्रभु जो कैसे खड़े हैं, देने के लिए खड़े हैं। लो, क्या देने के लिए खड़े हैं, भक्ति और प्रेम देने के लिए खड़े हैं। देखिए उनकी आंखें जो कैसे कितनी कितनी करुणा से भरी हुई हैं, कमल दल के समान विशाल आंखें हैं उनकी, कान तक पहुंची हुई, हाँ इतना प्रेम और कितनी करुणा उनके चेहरे पर है। और दोनों हाथ से वो अपना धन लुटा रहे हैं, ले लो, इस दुनिया के शरीर पर शरीर को धारण करते हुए दुनिया का भोग लेने वाले सभी बद्ध जीवों, ले लो इस धन को, स्वीकार करो और अपने जीवन को धन्य करो, दोबारा इस दुनिया में मत आओ दुख भोगने के लिए। ऐसे धामेश्वर महाप्रभु हमको बता रहे हैं। तो सब लोग उनको प्रार्थना कीजिए, विष्णुप्रिया की याद कीजिए और विष्णुप्रिया को जो चरण चिन्ह, जो चरण की पादुका भगवान ने भेंट दी उसका भी दर्शन कीजिए। ये मंदिर जो है ये गहरा चिंतन करने के लिए है, हृदय के अंदर के कोने में रो रो कर भगवान को प्रार्थना करने के लिए है। जो भी हमारा अटैचमेंट है उसको त्याग करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ये मंदिर है। जिस वस्तुओं में हमारा मन लगा हुआ है, जो वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति बनी हुई है वो हमको यहाँ पर बांध के रख रही है, उन वस्तुओं को त्याग करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर प्रार्थना कीजिए। विष्णुप्रिया देवी इस त्याग का एक महान उदाहरण है, जिन्होंने हमको एक अच्छा ऐसा उदाहरण दिया कि जिसका नाम भी नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनका जिक्र भी नहीं किया है पूरे चैतन्य चरितामृत में, लेकिन हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पूरे आंदोलन में उनका एक बहुत महान सहयोग है। उन्होंने कहा यस यू कैन गो, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत उनको पीड़ा दिया, कष्ट दिया, नहीं जाएंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, बिल्कुल समर्पित होकर उन्होंने स्वीकार किया उनकी इच्छा को। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वो ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो आसान होता है, कई बार वो कठिन होता है। और जितनी भक्ति की चरम सीमा आपको पार करनी है, प्राप्त करनी है, उतना वो कठिन होते जाता है, इट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। इसलिए हमें विष्णुप्रिया देवी को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हम कभी भी अपने जीवन में उनका जो त्याग है उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, नकल नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने किया एक महामंत्र बोल के एक चावल बाजू में रखना और वो जितना थोड़ा सा चावल इकट्ठा हुआ है उसी को खाना, ये कभी भी हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट नेवर इमेजिन दैट वी कैन डू इट, लेकिन वो जो भाव है उससे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि उनका एक अंश भी हमको अगर मिले केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए। वो तपस्या उनकी तपस्या की कैटेगरी में नहीं आती है, उनका त्याग केवल भगवान के चरणों में समर्पित था। कई संतों के लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, हाँ तपस्वियों में उनका नाम गिना जाएगा, इस भावना से नहीं किया गया था उसको। एक हृदय जो पूर्णता समर्पित है अपने नाथ के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को निछावर करने की जो शक्ति है उसका प्रमाण है विष्णुप्रिया देवी। इसलिए आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, 2 मिनट के लिए आप एकदम शांत रहकर विष्णुप्रिया देवी के लिए प्रार्थना करना, धामेश्वर गौरांग के लिए प्रार्थना करना, और यहीं बैठकर उन पादुकाओं का दर्शन कर सकते हैं, या कुछ देर बाद में उठकर वहाँ पर लाइन लगाकर अच्छी तरह से भक्ति भाव से धक्का मुक्की न करते हुए बड़े भाव से श्रद्धा से और प्रेम से दर्शन कीजिए और करुणा की याचना कीजिए कि हमारे हृदय में भी जो रेगिस्तान की तरह सूखा है, कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, तो ऐसे रेगिस्तान जैसे पत्थर दिल में भी हमारे कुछ भक्ति का अंकुर निकले, कुछ त्याग भावना समर्पित भावना निकले, तो कि हमारा जीवन भी आपके चरणों में सफल हो सकता है, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। श्री विष्णु प्रिया देवी की जय। धामेश्वर गौरांग महाप्रभु की जय। कुलद्वीप धाम की जय। निथाई गौर प्रेमानंदे।